पृष्ठ संख्या 28। कुछ लोगों ने इस युग के आलोचकों में प्रसिद्ध लेखक और पत्रकार श्री बाल मुकुंद गुप्त को भी स्थान देने का प्रयास किया है। ब्रैकेट में देखिए हिंदी आलोचना विश्वनाथ त्रिपाठी पृष्ठ संख्या 47 ब्रैकेट क्लोज। किंतु यदि पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित कुछ फुटकर लेख और पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी से होने वाली नोकझोंक उन्हें आलोचक पद का अधिकारी बना देती है, तो अधिक उचित यह होगा कि उन बहुत से लेखकों का विवरण भी एकत्र किया जाए जो उस समय सरस्वती एवं अन्य पत्रिकाओं में प्रकाशित छिटपुट आलोचनात्मक रचनाओं के माध्यम से सामने आए। द्विवेदी युग में कुल मिलाकर दो प्रकार की आलोचना पद्धतियां प्रमुख रूप से सामने आई। एक तो वे आलोचक जिनकी काव्य रुचि रीतिबद्ध थी, जिन्होंने या तो रीतिकाल के कवियों को लेकर तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किए या उस काव्य के अर्थ प्रकाशन पर ध्यान दिया। ये आलोचक निश्चय ही काव्य मर्मज्ञ थे, किंतु इनकी साहित्यिक रसिकता एक विशेष प्रकार के साहित्य तक सीमित थी। ये रीति साहित्य की मार्मिक एवं विशद व्याख्याओं एवं टीकाओं में संलग्न रहे। इस प्रकार ये आलोचक एक ओर तो इस साहित्य को समझने समझाने का मार्ग प्रशस्त करते रहे और दूसरी ओर इनकी व्याख्याओं के माध्यम से इस साहित्य की शक्ति और सीमाएं भी सामने आईं। इन आलोचकों को इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए कि इन्होंने रीतिकालीन साहित्य के अध्ययन की परंपरा को कायम रखा, किंतु इन्होंने आलोचना की जो पद्धति अपनाई उसका आधार भी यही साहित्य था। अतः अपने युग की नई चेतना के साथ ये न्याय न कर सके। इनकी आलोचना के प्रतिमान शुद्ध साहित्यिक प्रतिमान थे, जिनमें काव्य के शैली शिल्प के परीक्षण का विधान तो था, किंतु सामाजिक चेतना के अथवा कवि की अंतश्चेतना के संदर्भ में साहित्य को देखने परखने की गुंजाइश नहीं थी। वस्तुतः यह रीतिकाल की आलोचना पद्धति का खड़ी बोली संस्करण था। आलोचना की दूसरी प्रवृत्ति उन आलोचकों में दिखाई पड़ी जिन्होंने अपनी समय सजग दृष्टि से यह जान लिया था कि काव्य रचना और आलोचना दोनों के लिए परंपरागत रीतिबद्ध दृष्टिकोण व्यर्थ हो चुका है। वे एक नई काव्य रुचि के निर्माण की आवश्यकता का अनुभव करते जाते थे और अनुरोध भी, पर अपनी आलोचना में किन्हीं नए मानदंडों की खोज वे भी नहीं कर पाए थे। काव्य भाषा के प्रश्न को लेकर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जिस विवाद को निर्णायक रूप दिया, उससे निश्चय ही उनकी आधुनिकता और लोक दृष्टि का परिचय मिलता है। यह प्रयास केवल गद्य और पद्य की भाषा को एक करने का साहित्यिक प्रयास नहीं था, बल्कि साहित्य और जीवन की भाषा को एक करने का विराट सामाजिक प्रयत्न था। जीवन के संदर्भ में साहित्य को जांचने परखने का आग्रह उनके नैतिक उपयोगितावाद के रूप में भी दिखाई पड़ा।